ओम शांति। मास्टर ज्ञान सूर्य में बेफिक्र का प्रकाश भरने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी। हम सभी ब्रह्मावर्त दीदी से पूर्व परिचित हैं। दीदी पिछले 46 वर्षों से प्यारे बाबा की शिक्षाओं का अध्ययन मनन चिंतन कर रही हैं। तपस्या और धारणाएं आपकी विशेष अभिरुचि हैं। आप 43 इयर्स से समर्पित जीवन विश्व सेवा के लिए व्यतीत कर रही हैं। आपने 21 वर्ष गुजरात की धरणी पर समर्पित सेवाएं दी और विगत 22 वर्षों से मधुबन बेहद घर से विश्व सेवा कर रही हैं। आप राजयोग की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के बिजनेस इंडस्ट्री विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप प्रखर कुशल वक्ता और विषय की गहरी पैठ आपके वक्तव्य में है। ऐसी आदरणीय सम्मान्य बहन जी को अपने बीच उपस्थित देखकर हम सब एक हाथ की ताली से अभिनंदन स्वागत करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी सफल योग भट्टी के लिए हमें बेफिक्र ब्राह्मण जीवन के लिए मार्ग प्रदर्शना प्रदान करें आदरणीय दीदी।
ओम शांति। अच्छा लग रहा है सबको, प्रकृति का पूरा साथ मिला है आपको। आगे काफी ग्रुप आए लेकिन गर्मी थी। बरसात के फुहार चारों ओर, शीतलता में तप करना अच्छा लगता है। साइलेंस में बैठ के अंदर ही अंदर, मन ही मन प्यार से बाबा को याद करते रहे और उस याद का अतीन्द्रिय सुख आनंद महसूस करते हैं। बाहरी रूप से देखने में हम कुछ भी नहीं कर रहे, लोग भी बेचारे सोचते हैं कि ये शांति से बैठते हैं और एक दो को देखते रहते हैं, पता नहीं ये कौन सा योग करते, कुछ करते तो है नहीं पर बाबा कहते हैं कि अंदर ही अंदर अपनी अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर हम देह से न्यारे हो जाते हैं, बुद्धि से ऊपर उड़ जाते, कितना दूर चले जाते और बाबा से मिल के आ जाते। उस याद स्मृति का ही आनंद है। यथार्थ स्मृति हर बात की बाबा ने बताई। स्मृति गलत है दुख देती, दुख की बातें याद करते रहे, बीती बातें याद करते रहे तो वो दुख देती। वही यथार्थ स्मृति सुख देती। स्मृति स्मृति ही संपदा, विस्मृति ही विपदा, ये कहा हुआ है। स्मृति ही संपत्ति है, उसमें सुख है, आत्मा भरपूर महसूस करती। भूलना ही विपदा है, विस्मृति भूल जाना, वही विपत्ति को आमंत्रण देता है। हम क्यों रोज अभ्यास करते हैं? ताकि निरंतर श्रेष्ठ स्मृति रहे। हमारा लक्ष्य ही है चारों ओर से डिटैच हो जाना, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप। जब किसी में मोह होता है, हम वहां केंद्रित हो जाते हैं, उसी में केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नष्टो मोह, डिटैच रहते हैं, यथार्थ स्मृति रहती है। ये रोज का अभ्यास, बार बार का अभ्यास, धीरे धीरे हमें नेचुरल योगी बनाता है। मधुबन की भूमि में ये ही वरदान मिलता है, नेचुरल योगी है ही बाबा का घर। कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका ही कार्य है। सेवा करो और न्यारे हो जाओ, तो नेचुरल बाबा याद रहता है। और जो नेचुरल है वो ही निरंतर हो सकता है, वही निरंतर हो सकता है। जो अननेचुरल है, मेहनत है, वो सदा नहीं हो सकता है। आप जपेंगे कितना समय, रटेंगे कितना समय, गाएंगे कितना समय, आसन लगा के बैठेंगे कितना समय। जो अननेचुरल है वो सदा नहीं हो सकता है। बाबा ने नेचुरल मेथड अपनाए, याद करना, और याद करना आत्मा का स्वभाव है। हम कुछ ना कुछ याद करते ही रहते, किसी न किसी की याद बनी ही रहती। बाबा ने ज्ञान दे दे करके, रोज पढ़ाई करा करा करके बुद्धि को ज्ञान से भरपूर कर दिया, ताकि यथार्थ याद, श्रेष्ठ याद रहे। इसलिए रोज बुद्धि में ज्ञान भरना और रोज अभ्यास करना, आज बरसों के अभ्यास के बाद हम महसूस करते हैं कि अब बाबा की याद नेचुरल रहती है, देह से न्यारापन नेचुरल रहता है, बुद्धि से ऊपर नेचुरल रह सकते हैं। अंत तक पुरुषार्थ, और उसी में आनंद। बाबा ने ज्ञान हमें ऐसा दिया है, जीवन पद्धति ऐसी सिखाई है, योग जीवन पद्धति है, सिर्फ अभ्यास नहीं। योगी बनने के लिए सुबह शाम अभ्यास कर लो, इतना बाबा ने नहीं सिखाए। बाकी जैसे थे वैसे रहो, सुबह शाम योग ऐड कर दो, ऐसे बाबा ने नहीं कहा है। सुबह शाम योगी और दिन भर, ऐसा नहीं बाबा ने सिखाया। योगी जीवन, जीवन सदा की होती है। ऐसे कोई थोड़ी कहेगा मैं रोज 2 घंटे जीता, नहीं, जीवन माना जीवन। योगी जीवन है सदा निरंतर। तो योग जीवन पद्धति है। उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, देखना कैसे, चलना कैसे, सोचना कैसे, क्या खाना क्या पहनना, सब बाबा ने सिखाए। टोटल चेंज, पुरानी जीवन पद्धति में योग डालना नहीं है, नया जन्म। इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन, बाबा कहते हैं दिनचर्या, संग, पहरवाइश, आहार विहार व्यवहार, 5 ना पढ़ाई, सब चेंज, सब में परिवर्तन। और बाबा के ज्ञान से ऐसा सद्विवेक सद्बुद्धि हमें मिलती, विजडम मिलता है। बाबा सत्य बताते हैं। चलो पहला ही सत्य, मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये ज्ञान बाबा ने दिया, इससे विजडम क्या सीखा, इससे हमारे में विजडम क्या आया। समझ बुद्धि क्या आई कि हमें रूहानियत से रहना है, प्यार से रहना है, हम भाई भाई हैं, भेदभाव नहीं। तो इस एक सत्य से अगर हम भाईचारा सीखते हैं, रूहानी दृष्टि सीखते हैं, प्यार सीखते हैं, ये विजडम है। इससे हमारे में ये सयानप आई, दादी जानकी कहते हैं ना, सयानप विजडम आया, गुजराती में शाणपण कहते हैं ना। तो जो जीवन पद्धति बाबा ने सिखाई है, वो जीवन पद्धति ही इतनी श्रेष्ठ है कि आधे प्रॉब्लम तो उसमें समाप्त हो जाते, आधी समस्याएं अपने आप खत्म। हमारी लाइफस्टाइल ही बाबा ने ऐसी बनाई कि आधी समस्याएं तो ज्ञान में आते ही खत्म हो गई। क्योंकि अज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण कितने प्रॉब्लम्स है। आज जिनको सही ज्ञान नहीं है, बल पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, फिर भी कितने प्रॉब्लम है। एक दो को समझ नहीं सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं पाता है, परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, हिसाब किताब को नहीं समझ पाते हैं। ज्ञान ना होने के कारण बेसमझी और गैर समझी के कारण कितने प्रॉब्लम है, कदम कदम पर। बाबा हम बच्चों को ऐसा सेंसिबल बनाते हैं, रोज मुरली से क्या मिलता है, सेंस ही तो मिलती है, अकल ही तो मिलती है, समझदारी ही तो मिलती है। बाबा ने हमें चेंज कर दिया, आधे प्रॉब्लम तो हमारे खुद के कारण खुद को थे, हमारी समझ दृष्टिकोण सब बाबा ने चेंज कर दी। हम बदल गए तो कितनी समस्याएं खत्म हो गई, वरना जीवन में जब भी समस्या आती है इंसान उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढता है, किसके कारण आई है, इसके कारण, उसके कारण, ये नहीं हो तो ये ठीक हो जाए, ऐसा हो तो ये ठीक हो जाए, है ना। हम समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं, व्यक्ति खुद को तो देखता ही नहीं है ना, क्योंकि जानता ही नहीं, शरीर को जानता है इसलिए शरीर को देखता रहता है। सारे दिन में कितनी बार हम आईने में देखते, क्योंकि उसको ही जानते हैं ना। बाबा ने अंतर्मुखी बनाया, स्व में स्थित किया, स्व का ज्ञान दिया, तब समझ में आता है कि आधी समस्याएं तो हमारे अपने स्वभाव संस्कार से हैं, हमारे अपने दृष्टिकोण से। इसलिए हम कहते हैं कि फिकर से फारिग किया स्वामी सतगुरु ने, बाबा ने, जब से बाबा के बने आधी फिकर चिंताएं खत्म हो गई। आज भी बाबा ने कहा न संगम युगी बेगमपुर के बच्चा, सच में ऐसा। और अब हम जीते ऐसे हैं, चलते ऐसे हैं, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ के नए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना। जैसे कई चलते ऐसे है ना, दो चार से तो टकराएंगे, दो चार चीजें गिरा देंगे, भाई चलते ही ऐसे हैं, कहीं ना कहीं ठुक जाते। बाबा ने जीना ऐसा सिखाया, चलना ऐसा सिखाया कि कम से कम बातें उत्पन्न हों। बजाई की बातें उत्पन्न होती रहे और ठीक करते रहे, इससे तो बाबा ने सिखाया ऐसे कि नए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। वो समझ, सावधानी, शिक्षाएं बाबा ने दी। और पूर्व के हिसाब किताब से चलो इस जीवन को हम ठीक कर रहे हैं बाबा से। पर बाबा ने कहा है ना कि जो कर्म में आ गया वो तो नोंद हो गई। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में था ना कि क्षमा नहीं होता है, वो तो हिसाब बन गया ना, वो तो नोंद हो गई, हिसाब किताब बन गया, वो चुकाना ही पड़ता है। इसलिए भाई जैसे कोई व्यक्ति गलत काम करके फिर वो अच्छा बन जाए तो हिसाब माफ थोड़ी हो जाएंगे। तो पूर्व के हिसाब किताब से, ज्ञान के पहले के हिसाब, उसके कारण जो बातें आती है वो तो हमें हिम्मत से, धीरज से और योग से उन बातों को हमें पार करना है। वो कोई मिटा नहीं सकता, वो हमें हिम्मत, योग और धीरज से पार करना है। हमारा सौभाग्य ये है क्योंकि हिसाब किताब तो हर कोई चुकाएगा, पर हमें फायदा क्या है? कई सोचते हैं ना बाबा के बने तो भी हिसाब किताब चुकाते रहे तो फायदा क्या बाबा के बनने का? बाबा के बनने का फायदा ये है कि नया हिसाब हमारा हम बनाते नहीं ना, क्योंकि हम बाप समान ज्ञानी तो आत्मा है। बने हुए हिसाब चुकाने के लिए जो भी बातें हमारे सामने आती है परिस्थिति के रूप में आती है, बीमारी के रूप में आती है, संबंधों में कुछ बातें होती है, पर उस हिसाब किताब चुकाने के समय हमारी बुद्धि में ज्ञान है, बाबा याद है, उस समय बाबा हमारा साथी है, आत्मा को अंदर से एक धीरज आथत रहती है कि बाबा मेरे साथ है। जहां हम याद करें वहां बाबा हमारे साथ है, ऐसे साथ नहीं रहेगा। जहां हम याद करें तो बाबा वहां हमारे साथ है। व्यक्ति बीमार पड़ता है, दर्द तो खुद को ही सहना है ना, पर अगर उस समय जो भी मित्र संबंधी है वो प्यार से हाजिर रहते हैं, मददगार रहते हैं, तो व्यक्ति को हिम्मत रहती है। किनका केयरिंग, इनका साथ मुझे मिल रहा है, वरना दुख भी और कोई मदद करने वाला भी नहीं। हमारे साथ बाबा है, हर क्षण का साथी, हर स्थान का साथी एक निराकार ही हो सकता है, शरीरधारी नहीं हो सकता है। कई बार हम कहते हैं ना कि बाबा तो निराकार है, क्या मदद करेगा। सत्यता ये है कि निराकार ही मदद कर सकता है, और निराकार होने के कारण हर क्षण और हर स्थान का साथी बन सकता है, शरीरदारी थोड़ी बन सकता है। सिर्फ मुझे वो याद आवे, है ना, उस समय बुद्धि भटके नहीं। सबसे पहले वो मुझे याद आए, ठीक है, फिर उस समस्या, उस बीमारी, उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए जो यथार्थ प्रयास करने हैं वो हम करें, पर सबसे पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए, क्योंकि मेरे सर्व संबंध उनसे हैं और उनको मैंने जीवन का आधार बनाया है, साथी बनाया है। तो नेचुरली हम भारी नहीं हो जाते। देखो, छोटे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, बच्चा छोटा है, कमजोर है, आपस में लड़ भी रहे हैं, डर से बच्चा भाग भी रहा है, पर अगर उसका पिता या भाई पावरफुल है, ऊंची पोजीशन पर है, तो डरता भी रहेगा, भागता भी रहेगा, देखना मेरे पापा को बता दूंगा, देखना वो तुमको ठीक कर देगा, मेरे भाई को बता दूंगा, मेरा भाई बहुत पावरफुल। भल हमारे में शक्ति नहीं है, पर अब हम किसके हैं, अब हम किसके हैं, हमारा साथी तो बलवान है ना, सर्वशक्तिमान है। वो याद रहे उस समय तो फिकर चिंता नहीं हो जाएगी, ताकत रहेगी कि नहीं, बैकबोन हमारा सर्वशक्तिमान बाबा है, कल्याणकारी बाबा है। और दूसरा ड्रामा का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, समय ही अंत का चल रहा है, लोग तो देख देख के दुखी होते हैं, व्यक्तिगत उनके सामने बात नहीं आती है, पर जो आज चारों ओर संसार में हो रहा है वो देख देख जान जान कर चिंता भय में है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है ये अंत का समय। हमें पता है ये अंत का समय, ये महापरिवर्तन का समय, महापरिवर्तन की वेला में तो हलचल होती है, उस हलचल में जो अचल रहता है वो बाहर आ जाता है। हलचल तो होती है ना, इसलिए कुछ भी होता है तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि हमें पता है, बाबा ने कहा है ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, हमें पता है, बाबा ने पहले से बताया है, अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है। जानते हैं तो शौक कम लगता है, समझा? हम जानते हैं ना आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो हमें आघात कम लगेगा, पता है। जिनको पता नहीं है वो उनको शक लगता है, ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों। उनको आघात लगता है, परिस्थिति का प्रभाव आ जाता है, उस पर परिस्थितियां हावी हो जाती है। बाबा जो नित्य दे रहे हैं ज्ञान और योग, वो सामान्य नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ चीजें बाबा दे रहा है। दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। कई बार ऐसी समस्या आती है तो हम सोचते हैं ना कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देता है, बस थोड़ा धन भी दे दे, साधन भी दे दे, बीमारी भी ठीक कर दे, क्या सिर्फ ज्ञान देता रहता है। पर वास्तव में वो ही काम आता है, देखते हो ना आप चारों ओर, जीवन भर मेहनत कर कमाया हुआ सेकंड में सुनामी आई, साइक्लोन आया, अर्थक्वेक हुआ, खत्म। उस समय कौन सी चीज मदद करती है, ज्ञान, खुद को संभालना, खुद को उस समय संभालना। और जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है ज्ञान ध्यान या भक्ति भी इवन, तो भी ताकत रहती, नहीं किया है वो बैलेंस उनका गंवा देते। इसलिए गवर्नमेंट तो कहती भी है ना कि जब आपदाएं आती हैं, चारों ओर से चीजों की मदद तो आ जाती है, पर आप लोगों के मन जो टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, शॉक लग जाता है, आपका ज्ञान योग सुना के उन्होंने हिम्मत लाओ, तब समझ में आता है कि समय पर खुद की स्थिति ज्ञान योग ही काम आता है। पता है ये सब होना ही है, अति का अंत होना ही है, तो चिंता नहीं रहती। बेफिकर का अर्थ ये नहीं है कि बातें हो ही नहीं, कोई ऐसी फिकर हो, ऐसी बातें ही ना आवे, ऐसा इस दुनिया में हो सकता है? वो तो सतयुग में ही होगा ना। बेफिकर का अर्थ है फिकर होते हुए भी हिम्मत में रहना, हलचल में न आना, अचल रहना, चिंतित भयभीत नहीं होना, उसको बेफिकर स्थिति कहते। बातें हों, परिस्थितियां हों, पर मुझ आत्मा में ज्ञान और योग की शक्ति भी हो। बाबा कहते हैं सब कुछ लूट जाने के बाद भी, चाहे वो खर्च हो जाता है, बह जाता है, चोरी हो जाता है, या कोई भी कारण से, चलो घर परिवार में कोई हिस्से में देता ही नहीं, सब लेके बैठ जाता है, एक हड़प लेता है, परिस्थितियां तो कोई भी आती है ना, कि भी हमारे बाप दादा का इतना था पर बड़े भाई ने पूरा हड़प लिया या छोटे भाई ने ले लिया। बाबा कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दो चीज आपके साथ है, भगवान और भाग्य, उसे कोई नहीं लूट सकता है। भगवान और भाग्य, और हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जब से हम बाबा के बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारे कर्म सत्य होते हैं, हमारे कर्म यथार्थ हो रहे हैं, सत्कर्म हो रहे हैं। तो सत्कर्मों का हिसाब जमा है, सिर्फ भगवान मिला है इतना नहीं है, भगवान मिला है और उनसे हमने भरपूर लिया है, पुरुषार्थ के बल से श्रीमत पर चल के, सत्कर्म करके, भगवान के हर कार्य में मददगार बनकर, हमने अपना भी जमा का खाता फुल किया है, किया है ना? वो भाग्य हमारे साथ है। फिर से और अच्छी तरीके से प्राप्त होता है। कहते हैं ना, प्राप्ति का एक द्वार बंद होता है तो बाकी और अनेक द्वार खुल जाते हैं। व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है, सिर्फ उस क्षण अपने आप को संभालना है कि निश्चय टूटे नहीं, लगन हटे नहीं, बुद्धि विपरीत ना हो। उस समय हमें अपने आप को संभालना है। और हम जानते हैं जीवन में बातें भारी क्यों लगती हैं। कुछ भी होता है व्यक्ति या प्रकृति से, व्यक्ति क्यों डिस्टर्ब होता है, भारी क्यों होता है, कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। क्योंकि देखने में तो कोई व्यक्ति ही निमित्त बनता है ना, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, ज्ञान में अज्ञान में, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी धंधे में, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, धोखा दिया, पक्षपात किया, अन्याय किया, दगा दिया, मूर्ख बनाया, अंधेरे में रखा, जो भी उसने ऐसा किया। देखने में तो व्यक्ति ही आती है, पर जब हम शांति से देखते हैं परिस्थिति को तो समझ में आता है, और समझ अंदर है भी पक्की कि ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। बाबा कहता है चलो कल्याणकारी है, कल्याणकारी तो है ही, हर परिस्थिति सबक तो सिखाती है। परिस्थिति जाने के बाद, थोड़े दिन के बाद हम ही कहते हैं कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, अगर ये नहीं होता तो मैं तो पता नहीं अंधेरे में ही रहती और मेरे साथ कितना धोखा हो जाता। चलो इतने से जाग तो गए हम। बाद में हम कहते हैं जब ठीक हो जाते हैं, अवस्था ठीक हो जाती है, तब हम कहते हैं, उस समय लगता है कि ऐसा किया हमारे साथ। पर ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, अयथार्थ कुछ भी नहीं होता है। जिस समय जिस आत्मा से जो हुआ एक्यूरेट हुआ, आज दुनिया में कोई फिल्म डायरेक्टर है, वो अगर फिल्म बनाएगा तो वो अपनी दृष्टि से एक्यूरेट बनाने का प्रयास करेगा, और वो कहेगा कि मैंने एक्यूरेट बनाई, तब उससे सेटिस्फेक्शन होता है। बिगर मतलब की फालतू सीन थोड़ी डालेगा, जो रेलेवेंट होगा वही सीन डालेगा ना, जो मैच होता हो उससे। संगम युग के ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? बाबा है ना, चलो पूरे ड्रामा का नहीं पर संगम का तो वो डायरेक्टर है ना। संगम युग कोई व्यक्ति का नहीं है ना, यज्ञ कोई व्यक्ति का नहीं है, ये पूरा कारोबार बाबा का है ना, एक्यूरेट है। तो हम भारी नहीं होंगे, हमें अयोग्य नहीं लगेगा, अयथार्थ नहीं लगेगा, तो शक्ति रहेगी। देखो शक्ति जाति किस में से है, जब हम सोचते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, पक्षपात हुआ है, इसने ठीक नहीं किया है, तो ताकत गई। पर जब ज्ञान याद रहता है कि ठीक है जो हुआ ठीक हुआ ना, हमें बहुतों का परिचय हो गया है ना, हमें बहुतों का परिचय हो गया कि कौन क्या है, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, कि हम यथार्थ परख लें, समझ लें। तो हम अपनी स्थिति बेफिकर अचल अडोल रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारा ज्ञान योग गहरा हो, ताकि समय पर वो बातें बुद्धि में आए। समय पर याद है, कहते हैं वो समय पर ही भूल जाता था कर्ण, समय पर याद है, इसलिए रोज हम अभ्यास कर रहे हैं ना, बुद्धि को एक्यूरेट बना रहे। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हम अंत के तरफ नजदीक पहुंच रहे हैं, बातें तो बढ़नी ही है, बातें तो बढ़नी है ना, दुनिया भी बेहद की, ईश्वरीय परिवार भी बेहद का, बातें तो आनी ही है ना। और पालना देने वाले, हिम्मत भरने वाले, शक्ति भरने वाले, एम्पावर करने वाले सोर्स कम हो रहे हैं, बाबा भी समेट रहा है अपना कारोबार, पहले कितने घंटों बाबा मिलते थे, अब बहुत थोड़ा समय, हमारी दादियां गिनी चुनी हैं, हमारे बड़े भाई बहने, इतना परिवार बढ़ गया है कि उस कारोबार में मिलते भी नहीं आजकल, इसीलिए अवेलेबल भी नहीं। तो चिंता नहीं करनी, हम तो असहाय हो गए, कोई मिलता नहीं है, अब बाबा भी नहीं मिलते हैं, चिंता नहीं, अब बाबा डायरेक्ट हॉटलाइन शुरू हो रही है, अब डायरेक्ट डायलिंग हॉटलाइन शुरू हो रही है, अब हम बाबा से डायरेक्ट ले सकते, इतने सक्षम बन जाएं, इतने सालों, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, तीस साल, चालीस साल, कितने साल हो गए ना हम सबको, अब हम इतने सक्षम होने चाहिए या हमें बनना होगा, ताकि हम डायरेक्ट ले सके बाबा से और अपने पांव पर चल सके। आखिर तो बच्चे को पांव पर चलना है ना। हर माँ बाप क्या चाहेगा, बच्चा जीवन भर अंगुली पकड़ के चले? हाँ, अगर उस समय की सीमा में बच्चा न चले तो माँ बाप को और चिंता होती है ना कि ये चलता क्यों नहीं। हाँ, उसकी उम्र हो गई, अभी तक ये चलता क्यों नहीं। पैरों के बल चले तो लगता है ना कि बच्चा मेरा स्वस्थ है। तो अब समय कौन सा है? अपने पैरों के बल बाबा से दादियों को बड़ों को देख देख के शक्ति भरनी है, बाबा से डायरेक्ट लेना। तो चिंता नहीं होगी, फिकर नहीं होगी, अब कोई पालना नहीं देता, अब कोई मिलता नहीं, ऐसा अफसोस नहीं होगा। हम समझ सकते हैं ना, हमारा परिवार बड़ा हो गया है ना, बहुत छोटे भाई बहने तैयार हो गए, अब हमें ही पालना देते रहे क्या कि उनको भी दे। अब अपनी शक्ति से लेना सीखना है बाबा से। तो हमें महसूस ही नहीं होगा कि कोई है नहीं, कोई है नहीं, कोई है नहीं। दादी गुलजार सदा बताते हैं ना कि यहाँ भारत में हम नजदीक है एक दूसरे, गुजरात वाले तो सबसे ज्यादा नजदीक है, पर विदेशों में तो कहाँ दूर दूर बैठे हैं, अकेले अकेले बैठे हैं। ईश्वरीय परिवार भी नहीं, मधुबन तो दूर है, दादियां तो दूर है, बड़े तो दूर है, पर खुद भी अकेले अकेले। हम शिकागो में गए, डाउनटाउन में सेंटर था, बिल्कुल बीच शहर में, इंग्लिश बहन थी, एक और सेंटर है ना जहाँ काफी भारतवासी आते, तो उसने बोला आप इधर भी आओ, मुरली क्लास कराना। मुझे बिठाया, अब सामने कोई भी नहीं, मैंने कहा किसको मुरली क्लास कराना, एक भी नहीं। कहते नहीं नहीं, उसने वो वाईफाई या स्काइप पे लगा दिया था कि लोग दूर दूर जहां हैं वो अपना खोल के बैठे हैं, आप कराओ, आप क्लास कराओ, वो वहां सुन रहे हैं। तब मुझे हुआ कि बाबा भारत का ईश्वरीय परिवार कितना अच्छा है, हमें इतना बड़ा परिवार मिलता है। आज हम 5, 10, 50, 100 मिलके पढ़ते तो है, और एक दोस्त से एम्पावर तो होते, मदद तो मिलती है ना। वो तो कहाँ कहाँ है, बेचारे भाषा भी नहीं समझते, पर दादी कहती है ना कि वो बाबा के सामने बैठ के पूरी बात बाबा को बता देते हैं, मन हल्का करते हैं, और फिर बाबा की मुरली पढ़ते हैं और उसमें से सॉल्यूशन मिलता है। तो सीखते हैं ना लेना डायरेक्ट बाबा से। अपनी शक्ति से चलना, और बाबा सदा है तो कोई चिंता की, भय की, डरने की बातें नहीं। बाबा कहते हैं चिंतन करो, इस बात को कैसे पार करना है चिंतन करो, चिंता नहीं कर, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। बाबा को बता दिया, बाबा साथ है, बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर फिर परिस्थिति को देखो और चिंतन कर, तो आपको सॉल्यूशन नजर आएगा, रास्ता मिलेगा। कुछ नया टच होगा, इसलिए रोज प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा अचल अविनाशी, मुझ आत्मा के आसपास जो भी है, शरीर से लेकर पूरा संसार हलचल है, वो तो हलचल है ना, परिवर्तनशील है, इसके बीच मैं अचल अडोल आत्मा हूं। स्वस्थिति पकड़ के रखना है, कहते ना तूफान के बीच वो सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां से तूफान उठता है वो सेंट्रल पॉइंट शांत और स्थिर होता है। हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है उसका केंद्र बिंदु कौन है? मैं खुद, मुझे अपनी स्थिति में अचल अडोल रहना है। शरीर सहित संसार हलचल है, मैं अचल हूं। रोज प्रैक्टिस। अचल अडोल एक रस सदा कौन है? बाबा है, तो उनसे बुद्धि होगी। बाकी तो सब कुछ बदलना ही है ना? ऐसे तो नहीं हम ज्ञान में आए तो हम सब ज्ञानी साथ शरीर छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? हर एक का पार्ट अलग अलग है, बाबा कहते हैं ना, हर एक का स्टेशन आता है और उतर जाते हैं। कोई लास्ट तक रहेंगे महावीर आत्माएं, बाबा कहते हैं मां विनाश तक रहेंगे, पर हमारा बुद्धि योग जो सदा का साथी है, है? उस बाप दादा के साथ है। तो हमारी स्थिति एक रस बनती जाएंगी, छोटी छोटी बातों में जल्दी अपसेट नहीं होना है। रोज आती है बातें, प्रैक्टिस करनी है इन बातों में जल्दी अपसेट नहीं होना है, शांति से पार करनी, करते 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 आत्मा में शक्ति आ जाती है, बड़ी बातें भी हम सहज पार कर सकते। परिवार की बातें हैं, चलो आपके सामने बात नहीं है, पर आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, परिवार है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, किसी को भी बातें तो आएगी ना? उनमें उनकी बातें होंगी, पर हमारा रोल कौन सा है? नहीं, हमारा रोल कौन सा है? हमारा रोल है सबको मदद करना, हम योगी ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें हर आत्मा को शुभ भावना से, योग बल से शक्ति भरनी है। जिस घर परिवार में कार्यक्षेत्र में एक भी योगी है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो वहां के सबको शक्ति मिलनी चाहिए, बल देना है हमें। कहते नाव डूब रही थी पर एक उसमें सती बैठी थी, सच्चा भगत बैठा था, तो सबको हिम्मत रही कि इसके कारण भी हम पार हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए होना चाहिए कि एक ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक योगी हमारी ऑफिस में है, हमारे घर में है, हमारे मोहल्ले में है, इसके सत से हम पार हो जाएंगे। हमारा रोल सब आत्माओं को देना है, मास्टर दाता बन के। इसलिए सिर्फ खुद को बेफिकर रखने की अवस्था नहीं, हमसे जुड़े जो भी हैं और हमारे आसपास जो भी हैं, खुद भी बेफिकर रहना है और उनमें भी हिम्मत बल शक्ति भरनी। धन लिमिटेड हो सकता है, साधन लिमिटेड हो सकता है, हम उससे किसी को मदद नहीं कर सकते, पर बाबा ने जो संपत्ति दी है, ज्ञान और योग से जो हमने गुण शक्तियां पाई हैं, वो तो हम दूसरों में भर सकते हैं। तो बनना है बेफिकर स्थिति, खुद की भी बनानी है और जो हमारे आसपास है उन सबको भी हिम्मत बल देना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं हा? अब खुद की बातें मुश्किल नहीं लगेगी हा? कहते हैं ना, अपने प्रॉब्लम को एक तरफ थोड़ी समय के लिए रखो, दूसरों को मदद करने लगो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा, उसके आगे हमारा थोड़ा ही लगेगा, है ना। व्यक्तिगत हर व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे सामने बात आई, मेरे सामने बात आई, हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारी कंपनी में ऐसा हुआ, नहीं, चारों ओर देखो, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कोई एक का नहीं हो रहा है। ओम शांति,
ओम शांति। दीदी ने हम सबको बैलून बना दिया है, बैलून, बैलून गुब्बारा। विजुलाइज करें, गुब्बारा उड़ता है अंदर की शक्ति से, जो अंदर भरा होता है उसी से वो उड़ान भरता है। तो दीदी ने हमें स्मृति रूपी संपदा देकर, बड़ी लाइन खींचकर, बिना मिटाए परिस्थिति रूपी छोटी लाइन को खत्म कर दिया। जब छोटे थे तो गेम करते थे ना, बिना रबड़ लगाई लाइन को छोटी कर दो, जो आपकी लाइन है, तो क्या करते थे, बड़ी लाइन खींच देते थे। तो सेवार्थ, जब हम जीवन परमार्थ के लिए जीते हैं तो उसके लिए भी अंदर की शक्ति चाहिए, और जब अंदर शक्तिशाली स्थिति होती है तो देते जाते हैं तो अपनी पीड़ा, अपनी समस्या और अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं। दीदी का किन शब्दों में हम शुक्रिया करें, ऐसी उड़ान आपने इस योग भट्टी को दी कि हम अपने संगम युग के पूरे ही शेष जीवन में इस उड़ान को सदा याद रखेंगे और अपने अंदर सत्य ज्ञान, अपने अंदर डायरेक्टर शिव बाबा ने हरेक का रोल जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी सत्यता की गहराई में जाते हुए स्वीकारते हुए हम ऐसे ही उड़ते रहेंगे, ऐसा संकल्प के साथ हम दीदी का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू दीदी।
बाबा सदा साथ है, अब हमें और क्या चाहिए।